أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمت جدي. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے جد نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. ماہ محرم الحرام، ماہ سوگ و ماہ قیام، ماہ اثار و فداکاری، ماہ رنج و ملال، ماہ تحفظ دین، ماہ دفاع حرمت دین، ماہ عزاداری، تمام ملت اسلامیہ بالخصوص تمام مومنین و مومنات، علماء کرام، مراجع الزام و تمام راہ روانے راہ ولایت و امامت کی عرض میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. ناظرین، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نجم الحسن نقوی صاحب، جو کہ مجلس علماء شیعہ یورپ کے سیکرٹری تبلیغات کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. پہلے پروگرام میں ہم نے قیام امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، اس کے کافی اہداف کو جاننے کی کوشش کی، اور توحید کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح جو اصلی محمد اسلام تھا اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کا جو قیام کا مقصد تھا وہ توحید اور رسالت جو ہے اس کو بچانا تھا، کیونکہ جس طریقے سے معاویہ اور یزید نے لوگوں کو اصلی اسلام سے دور کر دیا تھا، سیرت رسول جو ہے وہ بھلائی جا رہی تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے امت کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو آغا، آپ کو دوسرے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
جی شکریہ.
اور آغا، پچھلے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی توحید کے حوالے سے اور قیام کا مقصد جو تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس میں مختلف عقائد کے حوالے سے گفتگو کی. یہاں میں جس طرح آپ مجلس علماء شیعہ یورپ کے سیکرٹری تبلیغات کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں برطانیہ کی سرزمین پر، میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو تمام خطباء و ذاکرین اور علماء کرام جو ہیں مختلف جگہ پہ مجالس میں خطاب کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو خطباء اور ذاکرین ہیں اس حوالے سے اگر مجلس علماء کے سیکرٹری تبلیغات ہونے کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا پسند کریں گے کہ کن چیزوں کا خیال رکھا جائے جب خطاب کیا جائے، اور نوحے اور ماتم جو ہے اس میں کس طریقے سے میسج کو آگے پہنچایا جائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کروں گا، ظاہر ہے کہ علماء کی خدمت میں جو بات گزارش کرنے والی ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ موضوعات پہلے سے طے ہیں، علماء محنت کر کے آتے ہیں، بہرحال جو بھی چیز لے کے آتے ہیں یقیناً انشاءاللہ ایک بڑی تعداد متوجہ بھی ہے، صرف اس باب سے کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تذکر اور ایک ذمہ داری ہماری بنتی ہے. الحمدللہ مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے وہ اس وقت خصوصاً یہاں پہ یو کے میں گزشتہ چند ماہ سے جو سرگرمیاں انجام پا رہی ہیں، بڑے انشاءاللہ مثبت جہات میں یہ سفر جو ہے وہ جاری ہے، اور آئندہ بھی ہماری خواہش ہوگی خصوصاً تبلیغات کے عنوان سے ایک نیٹ ورکنگ کی جائے تمام تر اداروں کے مابین، اور اداروں کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو ایک خاص جہت سے، تاکہ دین کے بنیادی اہداف جو ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں. ماہ محرم الحرام جو یقیناً ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ذہن بھی آمادہ ہوتے ہیں، دل بھی آمادہ ہوتے ہیں، اور ایک فضا جو ہے واقعاً ایسی فضا ہے جس میں آپ دین کی بات کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے آمادگی بہت زیادہ ہے، سننے کی بھی اور انشاءاللہ اس کے نتائج کے حوالے سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مہینے میں، اس مہینے میں اگر ہم فوکس کریں واقعہ کربلا کے اندر، ایک تو پہلو جو معمولاً ہوتا ہے اور حقیقت بھی ہے، وہ پہلو ہے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کا پہلو، جس کو آپ ٹریجڈی کہیں، جو واقعاً ظلم بھی اپنی انتہا پہ تھا اور مظلومیت بھی اپنے عروج پہ تھی. تو یہ یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. और मैं समझता हूँ कि हमारे मजालिस की एक खूबी और हुस्न ये है कि होता है मजलिसे हुसैन, नाम होता है मजलिसे आज़ादारी सैयद शुहदा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तौहीद भी बयान होती है, उसमें रसालत भी बयान होती है, उसमें बहरहाल तकरीबन दीन के सारे पहलुओं को उलमाए कराम और खुतबा हमारे तवज्जो रखते हैं
यानी जिस
इंशाअल्लाह।
तरह के बाज़ उलमा इकराम कहते हैं जो मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसको अगर हम एक मकतब जो है ये
हाँ
कहा जाए तो
ऐसा ही है, और बड़ा खूबसूरत एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के बुज़ुर्गों तक के शरीक होते हैं, और हुसैन से इश्क के नतीजे में ये एक वाकई एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम मैसेज जो पहुंचाते हैं वो मुखातिबीन और जो तालिब इलम हैं वो हर सतह का तालिब इलम वहाँ पर मौजूद होता है। तो सिर्फ़ तवज्जो की ज़रूरत है ताकि सैयद शुहदा के असल पैगाम, और वो पैगाम वही है कि इमाम हुसैन के ज़रिए हम अल्लाह तक पहुँचें।
बिल्कुल
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह तक तौहीद की मार्फत का बेहतरीन ज़रिया है। ये जो फरमाया ना इमाम ने कि लोगों अल्लाह ने मखलूक को इसलिए खल किया है ताकि वो उसकी मार्फत हासिल करें, और जब इंसान मार्फत हासिल करता है तो उसकी इबादत में मशगूल हो जाता है, और इसी तरह गैर खुदा की इबादत से बेनियाज हो जाता है। तो किसी ने पूछा फरजंदे पैगंबर कि अल्लाह की मार्फत जो है वो कैसे हासिल की जाए, फरमाया अपने ज़माने के इमाम की मार्फत जो है वो अल्लाह की मार्फत का ज़रिया है। असल यही है कि ज़माने का वो इमाम, ज़ाहिर है कि इमाम हमारा अकीदा यही है कि ये 12 आइम्मा जो कि सिलसिला जारी है क़यामत तक, और आखिरी इमाम इस वक्त मौजूद हैं। तो अगरचे लोगों के साथ ज़ाहरी राबिता उनका नहीं है लेकिन मौजूद हैं, यकीनन उन्हीं की बरकत से इस कायनात में ये सारी जो है वो नेमतें परवरदिगार का फैज़ जो है वो जारी है। तो इस एतबार से असल इमाम की मार्फत है, तो इमाम की मार्फत जो है वो ज़रिया है। ये वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है सारुल्लाह। सारुल्लाह में एक बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा। वो क्या है सारुल्लाह का? एक माना सार का मान है खून, सारुल्लाह यानी खून खुदा, ये ताबीर है यानी इस्तारा है, यूँ समझें किनाया है। यह ज़ाहिर है कि अल्लाह का वजूद तो नहीं है और ना ही खुदा का कोई खून
बिल्कुल
है, यानी खुदा के दीन की रगों में जो खून दौड़ता है वो हुसैन इब्न अली सलावातुल्लाह अस्सलामु अलैह, यानी दर हकीकत इमाम हुसैन की मार्फत जो है वो दर हकीकत अल्लाह की मार्फत का ज़रिया है खुदा बंदे आलम की। तो मैं समझता हूँ कि मैं तमाम तर जो इस वक्त बानियान मजालिस हैं उनकी खिदमत में भी, और वो तमाम तर हजरात जो कि इंशाल्लाह आएंगे पढ़ेंगे खिताब करेंगे या नोहे की शक्ल में, इस सोसाइटी में रहते हुए जो बात बड़ी अहम है, मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी अब ऐसी है जिस जहाँ पे दीन सतीज़ कुव्वतें बड़ी ताकत के साथ अमल पैरा हैं। ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ये तकरीबन एक ऐसी सोसाइटी में रह रही है जहाँ लोग कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, यानी ज़रूरत है कि दीन की उस अजमत और दीन के उस पहलू को उजागर किया जाए कि जिसके ज़रिए हम आने वाली नस्लों तक जो है हम ऐसे पहुँचाएँ। मैं यहाँ पे एक तवज्जो और दिलाना चाहूँगा, बहुत ही अहम नुक्ता है, वो ये है कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के क़याम का आगाज़ जो है वो हज़रत अली अकबर की अज़ान से होता है। ये बहुत ही काबिल गौर है, बहुत ही। अज़ान यानी वही कलमा तौहीद है, अज़ान यानी दावत तौहीद है, अज़ान यानी दीन का जो बुनियादी मैसेज है उसकी दावत है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वही खुदा बंदे आलम की वहदानियत और उसकी किबरियाई का इकरार भी है, ऐलान भी है। यानी सैयद शुहदा के क़याम का आगाज़ यूँ समझे नारा तौहीद से होता है। किसकी ज़ुबान है मुबारक से? हुसैन के अली अकबर की ज़ुबान से, वो जो कि शबीह रसूल है। यानी रोज़ाना मारूफ है वो बात लिखी है किताबों में कि हर रोज़ जो है वो अज़ान देने वाले इमाम के जो सहाबी थे हज्जाज इब्न मसरूक, वो अज़ान देते थे लेकिन यार जब मर का हक व बातिल का आगाज़ होना था तो उस वो जो सूरज तुलू हुआ उससे पहले अली अकबर की आज़ान करबला के मैदान में गूंजी, ये बात बड़ी बुलंद है, ये बात बड़ी गहरी है। तो हम अपनी नौजवान नस्ल को क़्याम सैयद शुहदा का जो बुनियादी तरीन मैसेज है वो यही है कि ऐ नौजवानों, ऐ बच्चों, ऐ आने वाली नस्लों, हुसैन के क़्याम का आगाज़ उस नारे तौहीद से हुआ जो हज़रत अली अकबर ने बुलंद किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लिहाजा इस बुनियादी नुक्ते की तरफ इंशाल्लाह खुतबा तवज्जो भी करेंगी, हमारी भी
बिल्कुल
गुजारिश है उनकी खिदमत में, ताकि हम इस्लाम का वो प्रैक्टिकल मैसेज जो इस दुनिया में कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें, तो उनकी खिदमत में ये गुजारिश है इंशाल्लाह के यहाँ की सोसाइटी में जो हमारे नौजवान मौजूद हैं, और इस एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ बहरहाल हर आदमी हर बात कहने में आज़ाद है, तो इन आज़ाद फिक्र इंसानों को ज़ाहिर है कि कोई यानी आज़ादी मुतलक तो कोई इंसान भी नहीं कायल, इस फिक्र को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और वो रिमोट कंट्रोल जो है वो इश्क हुसैन है,
बिल्कुल
वो रिमोट कंट्रोल मार्फते परवरदिगार है। यानी ज़रूरत है कि इन फ़िक्रों को जो हर तरफ पता नहीं कहाँ कहाँ ये घूमती फिर रही हैं, इनको एक ऐसे मरकज़ की तरफ जमा किया जाए और बताया जाए कि सैयद शहदा मरकज़ हैं, सैयद शहदा दर हकीकत दीन की मानवियत का
बिल्कुल
मरकज़ हैं, और उसकी वजह भी यकीनन इसी बात में मुजबर है कि हुसैन उस मैसेज की कामिल तस्वीर है, हुसैन मिन्नी व ना मिनल हुसैन। इस कायनात के रसूल ने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ।
और इसके साथ ही जिस तरह आपने अभी हदीस का जिक्र किया, एक और हदीस जिस तरह मेरे जहन में आई कि इन्नल हुसैन व मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, यानी अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि हदायत का जो चिराग हैं वो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम हैं।
बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं थोड़ा सा आपकी बात से मुझे एक बात और तवज्जो हो गई, और बहुत ही गहरी बात है ये हदीस जो है, ऐसे हदीस का पस मंज़र एक है और इतना बुलंद है, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि सैयद शहदा अलैहिस्सलाम के क़याम को अगर तौहीदी ऐनक से देखेंगे तो कायनात से वसी है वो क़याम, उस क़याम की जो हकीकत है, कायनात मुख्तसर है उस मैसेज के पीछे। इस हदीस की जो नूरानियत है, जो मानवियत है, जो बैकग्राउंड है, वो बड़ी खूबसूरत है। वो क्या है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो फरमाया कि मैंने अर्श के दाएं जानिब ये जुमला लिखा हुआ देखा है,
अल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर। ये बात यहाँ की नहीं है, उस आलम नूर की है, उस आलम माना की है, उस आलम हकायक की है, उस आलम क़ुर्ब परवरदिगार की है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्श के दाएं जानिब ये जुमला लिखा हुआ देखा है। पैगंबर से सच्चा तो कोई नहीं है इस कायनात में, उनसे बढ़ के
बिल्कुल
कोई है जो जिनकी ज़ुबान मशीयत परवरदिगार के बिल्कुल ताबे महज है। हजूर की ज़ुबान मुबारक ज़ाहिर है कि कलाम इलाही है बेसिकली जी। तो फरमाया कि वहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इन्नल हुसैन मिसबा हो हुदा व सफ़ीना तो निजात, हुसैन हिदायत का चिराग है और हुसैन हिदायत का चिराग है और सफ़ीना निजात है। यानी बहुत बड़ी बात है, मेरी जान हमारी जानें कुर्बान हो रसूल कायनात की अज़मत और उनकी उस बुज़ुर्गी पे कि वो रसूल जिसको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। पैगंबर का ये फरमाना को मामूली बात नहीं, हुसैन हिदायत का चिराग है। क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि खुद हिदायत को भी समझना है तो हुसैन की नूरानियत के बगैर तुम नहीं समझ सकते। यानी सैयद शहदा की ज़ात अक़दस ही दर हकीकत हिदायत की नूरानियत को वाज़े करने वाली है।
अहसंत
यानी ये ये वही तकरीबन यूं समझें कि ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, इन्ना नाहनु नज़्जलना ज़िक्र नज़्जलना
जिक्र व इन्ना लहू
ना, तकरीबन आयत यूँ है, मुझे अब लफ्ज़ पूरे मुकम्मल ज़हन में नहीं आ रहे, अनज़लना इलैक ज़िक्र ले तो बैयना लिन्नास, मेरा हबीब ये ज़िक्र ये कुरान हमने इसलिए बयान किया है कि आप उम्मत के सामने बयान करें। मुस्तफ़ा के बग़ैर कुरान नहीं समझ में आता। इन्हीं खुद ज़िक्र खुद हिदायत के चिराग मुस्तफ़ा हैं और ये मुस्तफ़ा के नूर के हिस्से हैं। ये बाकी आइम्मा जो हैं मुस्तफ़ा ही की किरणें हैं, मुस्तफ़ा ही के सीरत तैयबा का परताव हैं, मुस्तफ़ा ही की सीरत की कंटिन्यूशन है। इस जाविये में देखना कि हुसैन जो है वो हिदायत का चिराग है। बग़ैर आले पैगंबर के कोई समझे कुरान को, ये मुमकिन नहीं है। कुरान की तमाम तरह हकीकत इनके सीने में है। हाँ ठीक है, एक मरहले पे आप समझ सकते हैं कुरान करीम, पहले मरहले कुरान करीम हर मरहले में हुज्जत इलाही है। पहला मरहला वही लफ्ज़ हैं जो कि अल्लाह ने नाजिल किए हैं, अगला मरहला उसके मानी हैं, उसकी तफसीर है, फिर उसके आगे उसकी कुरान करीम ज़मीन से लेकर आसमान क्या कहते हैं क़ुरब परवरदिगार तक अल्लाह की हुज्जत और नूर है। लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर, वो जो जो आखिरी मंजिल है कि हुसैन हिदायत का चिराग है, वह सफीना निजात। यानी इस कायनात में अगर किसी को निजात चाहिए तो वो हुसैन के सफीने में सवार हो जाए।
बिल्कुल।
मारा बड़ी
और माह मुहर्रम अल हराम जिस तरह आपने अभी गुफ्तगू की कि ये हमें याद दिलाता है कि उस नूर से मुत्तसिल होने के लिए जो हम मजालिस और अज़ादारी बर्पा करें उसमें जिस तरह अभी आपने जिक्र किया यहाँ की सोसाइटी जो है उसके मुताबिक उनवानात जो हैं उनको जिक्र किया जाए। तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ के जो मुख्तलिफ़ इमाम बारगाह और जहाँ पे मजालिस बर्पा होती हैं उन जगह पे काफ़ी लोग बड़े सगीर पाक व हिंद से जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, यानी यहाँ के उलमा जो हैं वो बहुत कम यहाँ होते हैं और यहाँ की प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ जो हैं वहाँ के उलमा काफ़ी हद तक नहीं उसको समझ पाते। तो इसको टैकल करने के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए?
बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं गुजारिश करूँगा बड़ी अदब के साथ कि अभी तक जो है ना हमारे मिंबर पे जो चीज़ पढ़ी जाती है वो हमारी आने वाले नस्लों की ज़रूरत नहीं है। मसलन जो चीज़ पढ़ी जाती है वो स्टिल अभी तक जो चीज़ तकरीबन गालिब पढ़ी जाती है, अगरचे बहरहाल बाज़ उलमा बहुत सारे मजामीन इससे हटके भी पढ़ते हैं, लेकिन जो गालिब रंग है वो है मुनाजरे का। मैं नहीं समझता कि हमारी इस सोसाइटी की ज़रूरत है मुनाजरा। ये आप इस सोसाइटी में तो लोग हमारी नस्लें दीन से दूर हो रही हैं, एक बात। दूसरी बात मैं गुजारिश करूँगा बहुत ही अदब के साथ है, वो ये है कि सोसाइटी इस सोसाइटी के अंदर यकीन करें ये दर्द दिल है, कहाँ बयान किया जाए। बिलाखिर ये मिंबर जो कि वाकई यूनिवर्सिटी है, ये मिंबर ही दर हकीकत दीन की सारी हकीकतों को खोलने के लिए है। और वो क्या है कि सोसाइटी में तलाक का रेट बहुत ज़्यादा है, निकाह की रस्में उतनी नहीं होती जितनी तलाक के लिए लोग रजू करते हैं, और ये वाकई अलमिया है, दर्दनाक है। तो दीन की इन इन पहलुओं को और दीन के हवाले से क्या तालीमात हैं कि इंसान दीन के ऊपर अमल पैरा हो। मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी खूबसूरत बात है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील सलावातुल्लाह सलाम अलैह, इमाम हुसैन सलातुल्लाह के वो जानशीन है, वो साथी है जिसको वो अज़ीज़ है, और वो करबला की पहली कुर्बानी है। हज़रत मुस्लिम की शख्सियत बहुत बुलंद है, बहुत ही बुलंद है। वाक़ करबला में हज़रत मुस्लिम की शख्सियत पे अगर मैं को हम गुफ्तगू करना चाहें तो कई पहलू हैं, पहलूदार शख्सियत है और बड़ी बाज़मत शख्सियत है। जनाब मुस्लिम की शहादत से पहले उन्होंने जो है वो एक वसीयत फरमाई है, मैं तवज्जो दिलाऊंगा। क्या बात यह है कि जब इंसान को मौत का यकीन हो जाता है तो फिर होश कायम नहीं होते इंसान के जी, लेकिन लेकिन सलाम हो हुसैन पर और हुसैन वालों पर, सलाम हो आकाए नामदार रसूल कायनात पर और आपके मकतब के उन परवरदा बुलंद इंसानों पर कि जिन्होंने कदम कदम पे दीन के आकाम और दीन की सुन्नतों को ज़िंदा किया है। मुस्लिम को जब यकीन हो गया अपनी मौत की, मौत का यकीन हुआ, तो दीन का एक बड़ा हुक्म है कि वसीयत करो। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने उस मरहले में अपनी शहादत से पहले वसीयत फरमाई। जी, खुद वसीयत का ज़िंदा करना दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि देखो मुस्लिम क्या, कौन सा दीन ज़िंदा कर रहे हैं। अपनी शहादत, अपने कत्ल, अपनी मौत से पहले दीन के एक हुक्म को ज़िंदा कर रहे हैं जनाब मुस्लिम। वो क्या है कि वसीयत कर रहे हैं। एक उस वसीयत में एक जगह पे एक नुक्ता ये है, फरमाया कि मेरी शहादत के बाद मेरी ज़रह को बेच के तो कुछ थोड़ा सा कर्ज़ है वो वापस करना। सुभान अल्लाह, कितना कितनी कितनी बड़ी बात है। इसमें भी बहुत गहरा मैसेज है कि यानी कर्ज़ जो है वो अदा करना चाहिए। जी, एक तो ज़ाविया ये है कि कर्ज़ को अदा करना है, बहरहाल दीन का एक हुक्म है। अब ये देखिए, ये बातें सारी करबला के वाक़े के साथ मिली हुई हैं,
बिल्कुल
यानी मुत्तसिल हैं कि दीनी अहकाम किस तरह ज़िंदा हो रहे हैं। फरमाया कि मेरे शहादत के बाद, मेरे मरने के बाद जो है वो मेरी ज़रा बेच के तो कर्ज़ अदा करना। अच्छा, एक और भी बात इसमें पिनहा है, वो क्या है कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम हुसैन का सफ़ीर, हुसैन का नुमाइंदा, परवरदिगार के नुमाइंदे का नुमाइंदा जो है वो कूफे में तकरीबन 2.5 माह रहे हैं, 2 माह और कुछ दिन ऊपर रहे। इतने अरसे में जनाब मुस्लिम ने लोगों की जेबों पर डाका नहीं डाला, ये वसीयत बयान बताती है कि इसका मतलब ये जितना अरसा रहे हैं सारे अखराजात जो है वो जेब से किए हैं। सैयद शोदा अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़ीर को बिल्कुल यानी वो सारे मामलात यानी सारे वसाइल देकर भेजा कि अगर कुछ अरसा रहना पड़ जाए तो ये ना हो कि लोगों से टैक्स लिया जाए और लोगों के गर्दनों पे सवार हुआ जाए। नहीं, ये बात बताती है कि नहीं, दीन के अहकाम को कदम कदम पे इस क़याम करबला ने ज़िंदा किया है, कदम कदम पे दीन के अहकाम को जो है वो ज़िंदा किया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात और मैं यहाँ पे इजाफा करना चाहूँगा, हज़रत मुस्लिम बिन अकील ही के हवाले से एक बात और बड़ी अहम है, और वो क्या है, वो ये है कि जनाब मुस्लिम जब हानी बिन उरवा के घर में क़याम पज़ीर थे तो कुछ अहबाब ने, बहरहाल मैं मुख्तसर गुज़रता हूँ इस बात से कि कुछ अहबाब ने आपस में मशवरा किया और ख़बर ये मिली कि इबन ज़ियाद जो है वो आ रहा है जनाब हानी के घर अहवाल पुरसी के लिए। तो अहबाब ने मिलके एक मशवरा किया और जनाब मुस्लिम से कहा कि जैसे इबन ज़ियाद दाखिल हो जनाब हानी के घर तो आप उसको उसको जो है वो कत्ल कर दें। अब मैं सवाल ये करूँगा कि इबन ज़ियाद तारीख़ में कितना करीह है और कितना मकरूह किरदार है। वाकया करबला में जो यजीद की सफाकियत को जिसने अमली शक्ल दी वो इबन ज़ियाद है। इस कदर मकरूह इंसान है तारीख़ का और वाकया करबला में इस कदर भयानक चेहरा है इबन ज़ियाद का। तो इबन ज़ियाद ना होता तो वाकया करबला की शक्ल कुछ और होती, यानी शायद ना होता, मैं ज़वाहिर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो शख्स आया, अहवाल पुरसी की और वो चला गया। जब चला गया तो अहबाब ने पूछा, कहा मुस्लिम से कहा कि आपसे तय था कि आप इबन ज़ियाद को कत्ल करेंगे, मैं दुश्मन घर पे है सामने है, तो क्या इबन ज़ियाद एक आदमी को कत्ल करना जनाब मुस्लिम के लिए मुश्किल था या आसान था। यानी वो शख्स जब पूरे शहर की फ़ौज के साथ लड़ सकता हो, बाद के वाक़यात ने बयान किया, तो क्या उसके लिए एक आदमी को मारना और वो भी इतने खबीस दुश्मन को मारना, जो दुश्मन दीन को मारना आसान था। पूछा आपने ये आप काम क्यों नहीं किया, सलाम हो जनाब मुस्लिम की अज़मत को और सलाम हो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को। वाकिया जनाब मुस्लिम ने जवाब दिया, फरमाया कि मैं करना चाहता था, मुझे पैगंबर की एक हदीस याद आ गई, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुस्लिम कत्ल हो गए, वाकया करबला बपा हो गया, इब्ने यजीद इब्ने ज़ियाद बच गया, ये सारे हवादिस कर्बनाक हो गए, पैगंबर का फरमान जिंदा हो गया।
अल्लाहु अकबर।
आप इस जाविये को फिर देखें, मुस्लिम कत्ल हो गए और वाकया करबला जैसा वाकया बपा हुआ, इब्ने ज़ियाद जैसा किरदार जिंदा रहा, लेकिन नतीजे में पैगंबर का फरमान जिंदा हो गया, मेरे आका का फरमान जिंदा हो गया। वो क्या है? फरमाया मुझे पैगंबर की हदीस याद आ गई, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुश्मन पे दुश्मन को इत्तला दिए बगैर उस पे हमला ना करो। सुभान अल्लाह, शुजात ये है, ये नहीं है कि छुप के जाओ और जाके मेरा मतलब है इंसानों को तह तेक कर दो। अगले को भी खबर होनी चाहिए कि किस मामले में मेरे साथ मुकाबला हो रहा है। ये वजह है कि ये सीरत किसकी है? ये अबू तालिब और अबू तालिब की औलाद की है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब भी मैदान जंग में जाते थे और फरमाते थे कि मैं मेरी पहली दावत यह है कि इस्लाम कबूल कर लो जी। तो ये बातें वो कहता था, नहीं मैं इस्लाम कबूल नहीं करता। फरमाते थे मसलन फ़र्ज़ करो कि फिर उसके बाद जो है वो जंग के लिए आमादा हो जाओ, फिर पहल नहीं करते थे। ये बातें छोटी नहीं हैं, तारीख़ बशरियत के सुनहरी बाब हैं। कौन है जो इन बातों को बयान करे? मैं समझता हूँ कि यही मेंबर है जो जिसको बयान करना चाहिए कि कदम कदम पर इस क़याम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने दीन के अहकाम को और सुन्नतों को ज़िंदा किया है, पैगंबर की सीरत को ज़िंदा किया है, दीन की हकीकतों को रोशन किया है।
मौलाना यहाँ पे एक जो बहुत इंतहाई अहम सवाल उठता है, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि जो मेंबर है ये एक यूनिवर्सिटी का काम करता है और एक दरसगाह इसको माना जाता है, तो इसमें जो लोग जो सुनने आ रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस तरह एक स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ लेक्चर लेके उसे उसकी कोशिश होती है कि इसको जज्ब किया जाए, उस पर अमल किया जाए, तो क्या इन मजालिस अज़ा का ये मकसद होना चाहिए कि हम जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब करने की कोशिश करें?
बड़ी ख़ूबसूरत कुरान की दो आयतें हैं, मुझे आपके सवाल से बात आ गई उसके जवाब में। एक जगह इरशाद है परवरदिगार का, फ़सअलु अहलत ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। बहरहाल इस आयत में बहुत सारी बहसें हैं,
बिल्कुल,
लेकिन मैं एक बात जो इस आया मुबारक से समझ में आती है, फ़सअलु है यानी सवाल करो, गोया दीन ने सवाल करने की तरगीब दिलाई है, गोया आगे बढ़ने की तबलीग की है, गोया दीन ये चाहता है कि तुम जहालत की अंधेरियों में ना रहो, तारीकियों से निकलो, सवाल करो यानी खोज करो, तहकीक करो, जो तुम्हारे जहन में शुबहात हैं उनको पूछो। मैं समझता हूँ हमारी नौजवान नस्ल हो या जितने भी वो लोग, जैसे आपने अभी सवाल किया है, जो लोग आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के प्रोग्रामों में आ रहे हैं, पहला मरहला हकीकत को जानना है। फ़सअलु यानी हकीकत को जानो जी, पहला मरहला ये है कि हकीकत को जानो, पूछो उलमा से, खुतबा से, जो लोग आ रहे हैं, कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के क़याम के हवाले से जो कुछ शुबहात हैं फ़र्ज़ करें, जो भी आपके जहन में सवाल आते हैं पूछने चाहिए, नंबर एक। एक और मकाम पे कुरान इरशाद फरमाता है, फबशर इबादी अल्लज़ीन यस्तमीउन अल-क़ौल फयत्तबिउन अहसनहु। बहुत ही खूबसूरत आयत है, फरमाया कि मेरे बंदों को बिशारत दे दो, अल्लाह फरमाता है फबशर इबादी अल्लज़ीन, कौन से बंदों के लिए खुशखबरी है? अल्लज़ीन यस्तमीउन अल-क़ौल, जो बातें सुनते हैं। और यस्तमे अरबी ज़ुबान में इस्तेमा का माना खाली ये नहीं कि ऐसे बस आंखें बंद करके गुजर जाते हैं, यानी दिलो जान से तो पूरी तवज्जो से सुनते हैं।
जिस तरह आपने पहले ज़िक्र किया कि मकसद जो होना चाहिए वो बिल्कुल कुर्बतन इलल्लाह मारफत का होना चाहिए,
इसमें कोई शक नहीं है, यानी पूरी तवज्जो से जाएं आप आज़ादारी को वाकई इबादत समझ के,
आसान
यानी आज़ादारी वाकई इबादत है, ठीक है ना जी। सैयद शहदा अलैहिस्सलाम की मजालिस जो हैं वो वाकई इबादत है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि अल्लाह की मार्फत का और दीन की मार्फत का ज़रिया है ये मजालिस, ठीक है जी। तो पहला मरहला हो गया इल्म की खोज, पहला मरहला है दीन के बारे में पूछना, पहला मरहला है कि आप पूछें जो आपके दिल में जो शुबहात हैं जो जहन में। अगला मरहला क्या है कि जब कोई खतीब बयान करता है यस्तमेउन, यानी पूरे जान दिल से सुनो कि ये खतीब क्या कह रहा है, ये आलम जो बयान कर रहा है मेंबर पे ये क्या कह रहा है। फ़यत्तबेउन अहसनहू, अगली बात आपकी है वो आप। अगला मरहला, पहला मरहला था इस्तेमा, लिसन, हियर नहीं, लिसन,
लिसन
हियर और लिसन में फ़र्क है। यहाँ कुरान करीम लिसन का माना दे रहा है कि यानी पूरी तवज्जो से पूरे जान दिल से जो है इस बात को सुनो। फ़यत्तबिउन अहसनहू, बातें तो बड़ी होंगी, जो सबसे बेहतरीन है उस पे अमल करो। तो अल्लाह फरमाता है बिशारत है उन लोगों के लिए, खुशखबरी है। लिहाजा सामईन की जिम्मेदारी यह है कि नंबर एक शुबहात को दूर करें, नंबर दो गौर से सुने, ठीक है जी। और गौर से सुनने के बाद कुरान का हुक्म यह है, अल्लाह फरमाता है कि इन बातों में से जो अहसन हैं, जो वाकई खूबसूरत बातें हैं, जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए एक वाकई मैसेज है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए जो एक हकीकता ज़ाबता हयात है उसके ऊपर, और जो बेहतरीन बात है, इसका मतलब है बातों का भी वज़न करो। हर बात अहसन नहीं होती, हर बात, हाँ इन बातों में कुछ बातें हैं जो बहरहाल आम बातें हैं, कुछ बातें हैं अच्छी बातें। अल्लाह फरमाते हैं अहसनहू, जो बेहतरीन बात है उस बेहतरीन बात पे क्या करो, फ़यत्तबिउना, उसको पल्ले बांधो और उस पे अमल करो।
नाज़रीन ने इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी।